ओम शांति। आज राजयोग के सत्र का चतुर्थ दिवस है और हम सभी 3 दिवसों से इस यात्रा पर है। बहुत सुंदर अनुभव सभी प्राप्त कर रहे हैं, तो आज के इस चौथे दिन पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी पधारे हैं, आपका हम दिल से स्वागत करते हैं। मैं बहनों से अनुरोध करती हूँ पुष्प गुच्छ देकर दीदी जी का स्वागत करें। ब्रह्मा कुमारी दीदी गीता जी, आपका जैसे नाम वैसे ही आपका जीवन है। गीता का बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो इसी महावाक्य अनुसार आपके जीवन में भी हर परिस्थिति में आपने एक समान स्थितप्रज्ञ अवस्था इस राजयोग के अभ्यास से प्राप्त की है। वैसे बाल्यकाल से ही आप मेधावी छात्रा बनकर रही है। 10वीं के बोर्ड के एग्जाम में आपने प्रथम क्रमांक प्राप्त किया है और ऐसी विशेष हस्ती उसी बोर्ड एग्जाम के बाद इस ब्रह्मा कुमारी सेवाओं में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित करते हैं। तो इतना बाल्यकाल से ही सेवाएं करते करते आपने गुजरात के भावनगर सब जोन को कई वर्षों तक प्रभारी के रूप में संभाला है और फिर उसके बाद इस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में ज्ञान सरोवर एकेडमी में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की है। इतनी विशेष हस्ती जिनके लिए हम क्या कहें, हम सभी भाग्यवान हैं कि आपने सिर्फ जो प्रभारी रूप से ज्ञान सरोवर में आवास निवास की ड्यूटीज को भी संभाला, तो साथ साथ स्वप्रबंधन की आप एक प्रभावी प्रशिक्षिका भी है। आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, इनर वर्ल्ड एंड आर्ट ऑफ बैलेंसिंग, सक्सेस अ न्यू डायमेंशन, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ऐसे बहुत जरूरी विषयों को आपने बहुत सुंदर रीति से सबको समझाकर मार्गदर्शन देते लाभान्वित किया है। कई प्रकार के आध्यात्मिक लेख आपने कई गणमान्य दैनिकों में, न्यूज़पेपर्स में आपने लिखे हैं, तो साथ साथ कई आध्यात्मिक मेलों का आयोजन किया है। देश विदेश में कई प्रकार के आध्यात्मिक विषयों को सबके सामने रखते हुए अनेक लोगों को लाभान्वित किया है और साथ साथ इस संस्था के द्वारा कई प्रकार के अवेयरनेस कैंपेन्स होते हैं, उनमें भी आपने अपना नेतृत्व दिया है। तो ऐसी विशेष हस्ती हम सबके बीच आज आए हैं और आपका विषय है राजयोग के अभ्यास से आध्यात्मिक शक्तियों का, अष्ट शक्तियों का हमारे जीवन में अनुभव। तो आज आदरणीय गीता दीदी जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे बीच यह बहुत कठिन पर बहुत सुंदर विषय हमारे सामने प्रस्तुत करें। ओम शांति।
ओम शांति। राजयोग के माध्यम से और ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से यह विश्वविद्यालय पिछले 87 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है। हमारी सेवा के मुख्य यही 2 साधन हैं, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग। सहज राजयोग वो जीवन पद्धति है जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सारे ही मूल सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है। यहाँ राजयोग कोई क्रिया नहीं है, जो आप सीख लें और घंटा आधा घंटा करते रहे। राजयोग श्रेष्ठ विधि से जीवन जीने की पद्धति है। यहाँ एक दो घंटे के योगी बनने की बात नहीं है, यहाँ जीवन को पवित्र और योगी बनाने की बात है। इस योग का आधार कोई क्रिया नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है, कोई मनुष्य गुरु नहीं है। इस योग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, ऐसे ऐसे अनुभव की स्थिति पर पहुंचते जाएंगे। इस राजयोग के माध्यम से हमें अपने जीवन में जो मन की सच्ची शांति मिली है, जो आत्मिक सुख मिला है, जो दिव्य गुणों की सहज धारणा हुई है और आंतरिक आत्मशक्तियों का विकास हुआ है, वो शांति सुख आनंद गुण और शक्तियां सभी आत्माओं को प्राप्त हों, इसी शुभ भावना से हमारे हर कार्यक्रमों में मॉर्निंग राजयोग के सत्रों का आयोजन किया जाता है। पूर्व दो सत्रों में स्वयं का सत्य परिचय, पिता परमात्मा का सत्य परिचय आप सभी ने प्राप्त किया। अब आपको स्पष्ट है कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। भल देखने में ये शरीर आ रहा है, पर शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, जड़ है, परिवर्तनशील और नाशवंत है। हम ये शरीर नहीं है, हम चैतन्य शक्ति है जो शरीर द्वारा कर्म करती है, कर्म फल भोगती है। कल आप सभी ने पिता परमात्मा का सत्य परिचय प्राप्त किया कि परमात्मा एक है, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप कल्याणकारी शिव परमात्मा है, जो जन्म मरण से न्यारे हैं, जो सर्व गुण और सर्व शक्तियों के सागर हैं। अब हम न भौतिक हैं, न परमात्मा भौतिक है, अंडरस्टूड है आत्मा का परमात्मा से मिलन, कोई भौतिक साधन से या शारीरिक क्रिया से नहीं हो सकता है। आत्मा का परमात्मा से मिलन केवल मन और बुद्धि से ही हो सकता है। इसलिए राजयोग में न कोई शारीरिक क्रियाएं हैं, हमें कोई आसन प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई रटने की, जपने की, मुख से गाने की, कोई औपचारिक क्रियाएं करने की भी आवश्यकता नहीं। हमें खुद को आत्मा निश्चय कर डायरेक्ट परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से योग लगाना है। इसलिए मन और बुद्धि से परमात्मा को याद करना, उनकी स्मृति चिंतन में रहना, इसको योग कहते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने आप को बार बार योग में दो मुख्य अभ्यास हम करते हैं, पहला अभ्यास है सोल कॉन्शियस बनने का, आत्मभिमानी स्थिति में स्थित होना। तो जैसे ही हम अपने वास्तविक ओरिजिनल सत्य शुद्ध आत्म स्वरूप से कनेक्ट होते हैं, हमारे अंदर गुणों की अनुभूति होती है। और दूसरा है गॉड कॉन्शियसनेस, जैसे ही हम उस परम शक्ति के साथ मन और बुद्धि से हम अपने आप को जोड़ते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर आत्म शक्तियों का विकास होता है। हम योग के माध्यम से परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, एम्पावर करते हैं। तो आज हम राजयोग के माध्यम से जो बहुत ही आवश्यक अष्ट आत्म शक्तियां कैसे विकसित होती है उसके बारे में समझेंगे। स्क्रीन पर आप देखिए कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिससे हम अपने आप को परख सकते हैं कि हम अपने जीवन में सफल है या नहीं है। क्या हम जल्दी थक जाते हैं? क्या हम छोटी छोटी बातों में भी चिढ़ जाते हैं? क्या परिस्थितियों को पार करना हमें मुश्किल लगता है? कुछ भी ना करते हुए भी बहुत कुछ सोचते रहते हैं? क्या हमें सामान्य से भी अधिक आराम की आवश्यकता होती है? क्या हम दूसरों के प्रॉब्लम्स और बातों को मुश्किल फील करते हैं? हमारे में क्षमता नहीं है ऐसा महसूस करते हैं? क्या हम निर्णय करना मुश्किल महसूस करते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। ये हमारे जीवन की स्थिति है जो बार बार रोज हम महसूस करते हैं। इससे सिद्ध है कि हमें अपने आप को स्पिरिचुअली एम्पावर करने की आवश्यकता है। परिस्थितियां पारिवारिक है, कार्यक्षेत्र की है, सांसारिक है, हम अपनी आत्म स्थिति से ही रेस्पोंड करते हैं। अगर हमारी आत्म स्थिति कमजोर है तो हम रिएक्ट करते हैं। अगर हम नॉलेजफुल एंड पावरफुल हैं तो हम रेस्पोंड करते हैं, पॉजिटिवली रेस्पोंड करते हैं। इसलिए हमें अपनी आंतरिक आत्म स्थिति को डिसिप्लिन्ड करने की आवश्यकता है, एनरिच करने की आवश्यकता है। हमारी आत्म स्थिति से ही हम जीवन की सारी एक्टिविटीज करते हैं। अगर हमारी आत्म स्थिति शक्तिशाली है, शुद्ध है, तो जीवन की सभी प्रवृत्ति और व्यवहार हम अच्छी रीति कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन परिस्थितियां पहले जैसी स्थिर नहीं रही है। हमारे आसपास का विश्व बहुत जल्दी बदलता जा रहा है, व्यक्ति भीतर से भी बदलता जा रहा है। इसलिए इन बदलती परिस्थितियों में, अस्थिर परिस्थितियों में अपनी आत्म स्थिति को स्थिर बनाना, शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। जैसे पत्तों का महल हवा के एक हल्के झोंके से भी टूट पड़ता है, इसी प्रकार अगर हमारे में आत्म शक्तियां नहीं है तो छोटी सी परिस्थिति भी हमें परेशान कर देती है। तो राजयोग वो आध्यात्मिक शक्तियां हमें देता है जिससे प्रैक्टिकल आचरण को प्रभावी और शक्तिशाली हम बना सकते हैं। हम जानते बहुत कुछ है परंतु आचरण में नहीं ला पाते हैं। इसलिए जो कुछ जानते हैं वो हमारे कर्म व्यवहार में भी हम ला सके, उसके लिए आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता है। चित्र में देखिए बताया है कि हमारे पास फिजिकल पावर है, परंतु अगर मन में उमंग उत्साह नहीं है तो कितना भी तगड़ा शरीर है परंतु हमें कुछ भी करने का मन नहीं होगा, क्योंकि मन में खुशी नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, हिम्मत नहीं है। हम बहुत बौद्धिक हैं, परंतु अगर सकारात्मकता नहीं है, रचनात्मकता नहीं है, तो बौद्धिकता का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमारे पास धन की शक्ति है, इकोनॉमिकली हम पावरफुल हैं, लेकिन अगर विजडम नहीं है, सदविवेक नहीं है, तो धन का सही उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये उमंग, उत्साह, हिम्मत, खुशी, बुद्धि की क्लैरिटी, सकारात्मकता, रचनात्मकता और विजडम, उसे ही स्पिरिचुअल पावर कहते हैं। पावर मीन्स टू इंस्पायर, नहीं के किसी को अंडर कंट्रोल करना। सही शक्ति वो है जो हमारे जीवन से, आचरण से हम दूसरों को शुभ प्रेरणा दे। हमारे पास वेल्थ है परंतु वैल्यूज नहीं है। देखो, नॉलेज है पर आत्मा में शक्ति नहीं है, इसलिए आचरण में नहीं ला पाते हैं। हम विद्वत्ता प्राप्त कर लेते हैं, पंडित बन जाते हैं, पर ज्ञान का स्वरूप योगी नहीं बन पाते। पैसा है पर विजडम नहीं है तो धन भी व्यर्थ कर देते हैं। टाइम है परंतु एक्यूरेसी नहीं है तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है। कहते हैं ना, वेस्टिंग टाइम इज वेस्टिंग लाइफ। विचार हर कोई करता है लेकिन मन की स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, दृढ़ता की शक्ति नहीं है, तो ये अनमोल विचार शक्ति भी वेस्ट होती रहती है। बोलना हर कोई जानते हैं, वाणी का वरदान हम सबको मिला है, लेकिन अगर वाणी में निर्मलता नहीं है, मधुरता नहीं है, निस्वार्थता नहीं है, तो वो वाणी वरदानी नहीं हो सकती है। कर्म हम सभी करते हैं लेकिन अगर हमारे कर्म परोपकारी नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, सम्मान युक्त नहीं है, तो हमारे कर्म खुद में या दूसरे में शक्ति नहीं भर सकती। इसलिए इस वेल्थ के साथ वैल्यूज को मिलाना है। तो राजयोग से हमें अष्ट शक्ति प्राप्त होती है जो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में बहुत जरूरी है। मानव जीवन के मुख्य चार बहुत ही की रिजल्ट एरिया है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एक है संबंध, दूसरा है हम स्वयं, तीसरा है कार्य और चौथा है परिस्थितियां। अगर हमें स्वयं में, संबंधों में, कार्यक्षेत्र में और अचानक आने वाली परिस्थितियों में सफल होना है तो इन शक्तियों की बहुत जरूरत है। पहली बात, संबंध। हम संबंध बनाते हैं ताकि समय पर सुख मिले, सहयोग मिले। परंतु जो संबंध हमने सुख के लिए बनाए हैं आज वो ही संबंध कलह क्लेश के कारण बन गए हैं। इसलिए आप देख रहे हैं संबंध टूटते जा रहे हैं। एक समय था लोग पहले संयुक्त कुटुंब में रहते थे, आज विभक्त कुटुंब हो गए हैं, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है जिसके कारण रिलेशंस ब्रेक हो रहे हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। ये बताते हैं कि संबंधों का सुख नहीं रहा है। तो अगर हमें अपने पारिवारिक या कार्य क्षेत्र के संबंधों में सफल होना है, हार्मनी लानी है, तो दो विशेष शक्तियां चाहिए, सहन शक्ति। सहन शक्ति माना आत्मा इतनी शक्तिशाली हो कि किसी का कैसा भी व्यवहार हमें डिस्टर्ब ना करे और हम उनके साथ अच्छे से अच्छा रिटर्न कर सके। सहन शक्ति माना आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाए कि रिएक्ट ना करे। आजकल हम देखते हैं कि हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं, हमें एक्ट करना है जबकि मोस्टली हम रिएक्ट करते रहते हैं। इसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूंगी, उसने दो बोला मैं चार बोलूंगी, सब भ्रष्टाचार करते हैं इसलिए मैं भी करूंगी। ये बताता है कि हम इंटरनली आत्मस्थिति से शक्तिशाली नहीं हैं। लेकिन जब हम वास्तविक आत्मा स्वरूप को जानते हैं कि हम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे में वो समझ और शक्ति आती है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार कर पाते हैं। दूसरा चाहिए एडजस्टमेंट पावर। हरेक को एक्सेप्ट करने की शक्ति। इस वर्ल्ड ड्रामा में हर आत्मा के अपने अपने स्वभाव है, संस्कार है, व्यवहार है। इसलिए जो है जैसे है, हमें जो मिले हैं उनको हम प्यार से स्वीकार करें। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हरेक का बुद्धि योग दूसरों में जाता है। इनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बरोबर नहीं हैं। इनकी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरी नहीं है। न स्वीकार कर पाने के कारण असंतुष्ट रहते हैं और असंतुष्ट रहने के कारण हम प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। अक्सर हम अधिकतर यही चिंतन और चर्चा करते रहते हैं कि फलाने ऐसे हैं, ये कैसे हैं, ये वैसे हैं। जरूर उस क्षण हम खुद को भूल जाते हैं कि हम खुद कैसे हैं। हम भी तो परफेक्ट नहीं हैं, हमारे में भी तो कई कमियां हैं, हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी है। क्यों नहीं हम हर एक को आत्म स्वरूप में देखें, उनके ओरिजिनल गुण स्वरूप में देखें, तो हम उनको इजीली स्वीकार पर कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। इवन कार्य क्षेत्र में भी आप देखिए, जब तक हम अपना गोल सिद्ध करें, हमें वैरायटी पर्सनालिटीज के साथ वैरायटी सिचुएशन से गुजरना होता है, काम करना होता है। अगर हमारे में ये एक्सेप्ट करने की, एडजस्ट करने की पावर नहीं होगी तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। ये एडजस्टमेंट पावर से हमारी पर्सनालिटी फ्लेक्सिबल रहेगी, हम सबके साथ मिलकर चल सकेंगे। तो संबंधों में समरसता, सामंजस्य लाने के लिए ये दो आत्मशक्ति की बहुत जरूरत है, जो योग अभ्यास से हम अपने आप में विकसित करते हैं। यहाँ आप देखेंगे हमारे हर कैंपस में पूरा भारत है, हर प्रांत के भाई बहने यहाँ समर्पित है। हम सबके लौकिक, पारिवारिक, एजुकेशनल बैकग्राउंड अलग अलग है, पर हम यहाँ स्पिरिचुअल बेस के आधार पर चलते हैं, आत्मिक प्यार से चलते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो हम मिल करके इतना बड़ा हेडक्वार्टर के कारोबार को संभाल सकते हैं। हमें अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता है, एक है परख शक्ति। हमें हर क्षण व्यक्ति को, व्यक्ति के भावों को, उनके वाइब्रेशंस को परखना होता है। हमें परिस्थितियों के पूर्व संकेत को परखना होता है, परंतु उसके लिए आवश्यक है क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट। अगर मन स्वच्छ नहीं है, बुद्धि स्पष्ट नहीं है, तो व्यक्ति के वाइब्रेशंस को, मन के भावों को या परिस्थितियों के संकेत को हम कैच नहीं कर पाते हैं। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जब कभी नेचुरल कैलेमिटीज जिस एरिया में आती है, सुनामी आती है, साइक्लोन्स आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, उस एरिया में जो पशु पंछी है वो जल्दी कैच करके उस एरिया से भाग जाते हैं, वे सेफ हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य का मन बहुत व्यर्थ और नेगेटिविटी से भरा हुआ है, इसलिए वो वाइब्रेशंस को या प्रकृति के सिग्नल्स को कैच नहीं कर पाता है। योग से हम मन और बुद्धि को शुद्ध बना सकते हैं। सत्य ज्ञान के आधार पर जीवन के हर कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जिस कारण हम बहुत जल्दी वाइब्रेशंस को कैच कर पाते हैं, व्यक्ति को परख पाते हैं। जैसे एक जलाशय का पानी साफ है, स्वच्छ है, स्थिर है, तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर कैच होता है। इसी प्रकार मन और बुद्धि शांत है, स्थिर है, शुद्ध है, तो हम वाइब्रेशंस और परिस्थिति के सिग्नल्स को कैच कर पाते। योग में हम अपने शांत स्वधर्म में स्थित होते हैं, उस सदा पावन ऑलमाइटी परमात्मा की याद में स्थित होते हैं। हमारे मन और बुद्धि शुद्ध शांत होते जाते हैं, तो हमारे में परख शक्ति आती जाती है। अगर हम सही नहीं परख सकते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, अगर हम ये नहीं परख पाते हैं, तभी हम धोखा खाते हैं। हमारा टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट होता है। कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए डिसीजन मेकिंग, निर्णय शक्ति चाहिए। कई बार हम परख लेते हैं कि ये राइट है, ये रॉन्ग है, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है। हम परख भी लेते हैं परंतु निर्णय नहीं कर पाते हैं कि जो राइट है वो ही करना है, जो गलत है वो नहीं ही करना है। ये निर्णय नहीं कर पाते हैं क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है, शक्तिशाली नहीं है। इसलिए योग से बुद्धि शुद्ध होती है, शक्तिशाली होती है, दिव्य बनती है। ब्रह्मा कुमारीज में बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए हम आत्मचिंतन, परमात्मचिंतन, शुभ चिंतन का अभ्यास करते हैं और महसूस करते हैं। हम खुद ही साइलेंस में बैठकर खुद की रियलिटी खुद को रिवाइज कराते हैं, रियलाइज कराते हैं। इससे बुद्धि शुद्ध होती जाती है, निर्णय करने की क्षमता हमारे में आती है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सके, ये क्षमता बहुत जरूरी है। परिस्थितियों में हम घबरा न जाएं, टेंस न हो जाएं, डिप्रेशन में न चले जाएं, उसके लिए दो शक्ति व्यक्ति की आवश्यकता है, एक तो परिस्थितियों को फेस करने की शक्ति, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति। जीवन है माना, परिस्थितियां तो आती ही रहती हैं। अचानक भयानक बीमारियां लग जाती हैं, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है, कार्य में नुकसान हो जाते हैं। इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए आत्मशक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। परिस्थिति दूसरों से आती है, प्रकृति से आती है, व्यक्ति से आती है, गवर्नमेंट से आती है। परिस्थितियां हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, परंतु हमारी आत्म स्थिति तो मेरी अपनी स्थिति है ना, उसको तो मैं पावरफुल बना सकती हूँ ना। तो जब हम योग करते हैं, हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, हम डबल हो जाते हैं, एम्पावर हो जाते हैं कि मैं अकेली नहीं हूँ, स्वयं परमात्मा मेरा साथी है। मन और बुद्धि परमात्मा की स्मृति से समर्थ बनते हैं, तो हम स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थिति को सहज पार कर सकते हैं। इसलिए हम जितना योगी बनेंगे, परमात्मा के साथ और शक्ति का अनुभव करेंगे। दूसरा है कॉपरेशन, पावर टू कॉपरेट, सहयोग शक्ति। परिस्थितियों के समय हमें सबका सहयोग मिले, ये हम चाहते हैं ना, पर सहयोग प्राप्त करने की विधि है, हम सहयोग देंगे तो हमें सहयोग मिलेगा, हम रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, हम जो देंगे वो ही हमें मिलेगा। ये इस कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है। इसलिए अगर हम सबको आत्मिक दृष्टि से देंगे, देखेंगे आत्मिक स्मृति में देखेंगे, तो सबके साथ प्यार से चल सकेंगे, उनके गुणों को देख सकेंगे। इसलिए योग से सहयोग की भावना विकसित होती है। जब हम मिलके चलते हैं, मिलके कार्य करते हैं, तो कितना भी मुश्किल कार्य सहज हो जाता है, एंजॉयबल हो जाता है। तो योग से सहयोग की शक्ति आती है, इससे हमें परिस्थितियों को पार करना सहज लगता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एम्पावरमेंट इन सेल्फ। हम फिजिकली एम्पावर होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं, फिजिकली अपने को एम्पावर करते हैं। इकोनॉमिकली भी अपने आप को एम्पावर हम करते रहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम खड़ी करते हैं ताकि हम खर्च कर सके, अच्छी खासा बैंक बैलेंस बनाते हैं ताकि अचानक कोई खर्चे आ जाएं तो हम घबराएंगे नहीं, हम उसको सहज पार करेंगे कि हमारे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस। इसी प्रकार आत्मा को, स्वयं को अगर हम शक्तिशाली बनाएंगे गुणों से और ज्ञान से, तो परिस्थितियों में घबराएंगे नहीं, हम आराम से अपने जीवन की नैया को पार लगा सकेंगे। सेल्फ को एम्पावर करने के लिए पावर टू विड्रो, हमारे में जब चाहे इन्वॉल्व होने की, जब चाहे डिटैच होने की क्षमता हो। हम विस्तार में तो चले जाते हैं, पर विस्तार कार्य पूरा हुआ, विस्तार से निकलकर सार में स्थित नहीं हो पाते। राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को देह भान से न्यारा करना। ये डिटैचमेंट की प्रैक्टिस से प्रैक्टिकल जीवन में बहुत फायदा होता है। देखो, आप सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक वैरायटी रोल्स प्ले करते हैं। अभी अभी आप बच्चों के आगे पिता के रूप में हैं, अभी अभी आप पत्नी के आगे पति के रूप में हैं, अभी अभी आप पिता के आगे पुत्र के रूप में हैं, अभी अभी आप ऑफिस में अपने कर्मचारियों के साथ बॉस के रूप में हैं। वैरायटी रोल्स हम प्ले करते हैं, परंतु एक रोल का प्रभाव लेकर दूसरा रोल प्ले करेंगे तो गड़बड़ हो जाती। भाई कोई कारण से घर में बहस हुआ, बोलाचाली हुई, वो गुस्सा लेकर ऑफिस में जाएंगे, बिना कारण कर्मचारियों पर गुस्सा कर देंगे। ऑफिस में कुछ डिस्टरबेंस हुआ, वही प्रभाव लेकर घर में आएंगे, पत्नी बच्चों पर गुस्सा कर देंगे, क्योंकि हमें एक रोल से दूसरे रोल में जाते समय डिटैच होने की प्रैक्टिस नहीं। हम अपने रियल सेल्फ को भूल गए हैं, हम खुद को शरीर समझ बैठे हैं, जो रोल प्ले करते हैं वो अपने आप को समझ बैठे। हम ये रोल्स नहीं हैं, हम ये शरीर ड्रेस नहीं हैं, हम इससे अलग आत्मा हैं। मेडिटेशन की ये पहली प्रैक्टिस बहुत प्रभावी है, इससे जब चाहे विस्तार में जाएं, जब चाहे सार में स्थित हो सकते। चित्र में कछुआ बताया है कि कछुए में भी सेंस है, जब चाहे कर्मेंद्रियां बाहर निकालता है, कार्य पूरा हो गया समेट कर शांत बैठ जाता है। लेकिन हम मनुष्य आत्माओं में वो क्षमता नहीं है। भाई कोई घटना हुई, बात बन गई, दो घंटे के बाद भी, चार घंटे के बाद भी दिन बदल गया, फिर भी उस घटना का मन पर प्रभाव पड़ता है। कल आपस में लड़े थे, आज दिन बदल गया, कल की नाराजगी आज भी है मन पर। इसलिए एक दोस्त से ठीक व्यवहार नहीं करेंगे, प्यार से बोलेंगे नहीं, क्योंकि कल जो बात बनी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाए। तो यहाँ रोज राजयोग का पहला अभ्यास सोल कॉन्शियस बनना, अपने कर्मेंद्रियों के और परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी शुद्ध आत्म स्थिति में स्थित होना, ये प्रैक्टिस हमें साक्षी बनना भी सिखलाता है। तो ये है पावर टू विड्रो। जब चाहे विस्तार में जाएं, जब चाहे बिंदु लगाकर फुल स्टॉप में स्थित हो जाए। और आठवीं शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। हम यात्रा पर जाते हैं, आवश्यक सामान लेकर जाते हैं, उपयोग करते हैं इस रीति से ताकि समय पर समेट लें और आगे की यात्रा पर जा सके। ऐसे ही जीवन भी यात्रा है। इस जीवन यात्रा में हमने अपने मन और बुद्धि के, इच्छाओं और विचारों के बिस्तर इतने खोल दिए हैं जैसे हमें यहाँ से जाना ही ना हो, इसलिए मन को समेट नहीं पाते हैं। योग में भी भाई बहने कहते हैं कि हम अभ्यास में बैठते हैं पर मन को समेट नहीं पाते, क्योंकि वेस्ट व्यर्थ इच्छाएं हैं, व्यर्थ इंटरेस्ट है। अगर इसको निकालेंगे नहीं तो अपने लक्ष्य के प्रति आप फोकस नहीं हो सकेंगे, एवर रेडी रह नहीं सकेंगे। इसलिए हमें जब अपना सही परिचय मिल जाता है, हमें जीवन का सही लक्ष्य हम निश्चित कर पाते हैं और उस लक्ष्य के अलावा जो कुछ व्यर्थ है उसको हमें निकाल देना, ये बहुत जरूरी है। आप जहां नौकरी करते हैं वहां फोकस तभी हो सकेंगे जब दूसरे इंटरेस्ट में आप एंगेज नहीं रहे। नौकरी यहां कर रहे हैं, इंटरेस्ट दूसरे बिजनेस में है, रहते इस व्यक्ति के साथ है, इंटरेस्ट दूसरे व्यक्ति में है, तो न कार्य में फोकस हो सकेंगे न परिवार में फोकस हो सके। इसलिए अपने लक्ष्य को क्लियर करें। जब हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है तो हमें क्लैरिटी आती है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, ये संसार का खेल क्या है, जीवन का वास्तविक पर्पस क्या है। तो वेस्ट को निकाल देते हैं, आवश्यक को प्यूरिफाई एम्पावर कर अपने आप में धारण कर लेते हैं। तो ये है समेटने की शक्ति, ये है अस आध्यात्मिक शक्तियां जो योग से हम अपने आप में ला सकते हैं। इसलिए इस अष्ट शक्तियों को ही भक्ति में अष्ट भुजाधारी देवियों के रूप में बताया है। हम समझ सकते हैं आठ हाथ वाली कोई देवियां या देवताएं नहीं हो सकते हैं। ये आंतरिक आत्म शक्तियों का प्रतीक है। इसलिए राजयोग से जब हम सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो हम आत्माएं शिव शक्तियां बनती हैं। ये रूहानी आध्यात्मिक शक्तियां हमारे में आती हैं। हम संसार की परिस्थितियों के नेगेटिव प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तो ये हैं योग द्वारा आत्म शक्तियों को प्राप्त करना, इससे सद्गुणों को भी स्थायी और इफेक्टिव रूप से हम धारण कर सकते हैं। अगर हाथ कमजोर है तो हम कुछ भी हाथ से उठा नहीं सकेंगे। हाथ मजबूत है तो अस्त्र शस्त्र कुछ भी साधन पकड़ सकते हैं। इसी प्रकार मन बुद्धि शुद्ध और शक्तिशाली हैं तो गुणों की स्थायी धारणा कर सकते हैं। तो हम कुछ क्षणों के लिए अभ्यास करेंगे। अगर ये अभ्यास आप रोज सुबह शाम करते रहेंगे तो अपने आप में बहुत पॉजिटिव पावर महसूस करेंगे। ये आत्म शक्तियां आने से ये लीडरशिप एटीट्यूड्स एंड एबिलिटीज हम अपने आप में ला सकते हैं और एक सफल नेता बन सकते हैं अपने कार्य क्षेत्र के, अपने परिवार के एक सफल लीडर बन सकते हैं। ये है 8 लीडरशिप एटीट्यूड। सभी व्यवस्थित बैठ जाएं, अलर्ट होके बैठ जाएं। कमर सीधी करके बैठेंगे तो आप थकेंगे नहीं और आपके चिंतन का प्रभाव हर ऑर्गन्स पर जाएगा। अपना डायरी, फाइल, पर्स, मोबाइल, हैंडबैग सब कुछ समेट कर साइड में रख दें। हाथ में लेके, गोद में लेके, गले में लटका के न बैठे, साइड में रख दें। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से अपने असली घर परम धाम में जाएंगे। ये आप सभी ने समझ लिया है कि ये दुनिया हमारे लिए कर्म क्षेत्र है, ये हमारा घर नहीं है। इसलिए हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। तो कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है? ये भौतिक दुनिया है, इस दुनिया में आकर पांच तत्वों का बना शरीर हम धारण करते हैं। हम आत्माओं का असली घर इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार परम धाम है, जहां प्रकृति का अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। हम आत्माएं ब्रह्म लोक की निवासी हैं। हमारे अविनाशी पारलौकिक परम पिता परमात्मा भी परम धाम के निवासी, इसलिए हम शरीर से यहाँ बैठेंगे, मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे। योग अभ्यास के समय हम गोल्डन रेड लाइट करते हैं, उसका कारण यही है ताकि हमें सहज स्मृति आए हम परम धाम के निवासी। हम मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से, परम ज्योति बिंदु परमात्मा पिता को देखेंगे और बुद्धि से याद करेंगे। पिता परमात्मा के ज्ञान का, गुणों का चिंतन करते हुए परमात्मा याद में और प्यार में एकाग्र होना, अनुभव करना, फील करना, उसको योग कहते हैं। ये आपके लिए नया अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री दूंगी, आपको मुख से रिपीट नहीं करना है। हमें मन ही मन रिवाइज करना है। जो विचार मैं आपको दूं, वो मन ही मन दोहराना है, अर्थ समझना है, रियलाइज करना, महसूस करना। आंखें नेचुरल खुली रहने दें, आंख बंद करके बैठेंगे आप सो जाएंगे। हमें जागृत रहना है दिव्य अनुभव के लिए, ज्ञान के द्वारा भी जागृत रहना है। कुछ क्षणों के लिए सभी बातों से अलग हो जाइए। आस पास की व्यक्तियों से, वस्तुओं से, परिस्थितियों से डिटैच हो जाइए। साक्षी बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच भ्रुकुटी में खुद के ज्योति बिंदु आत्म स्वरूप में केंद्रित हो जाइए। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूँ। मैं आत्मा ही आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। पर मैं मुख नहीं हूँ, आँख नहीं हूँ, कान नहीं हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति हूँ। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर पांच तत्वों से पार परम धाम है। जहाँ अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है। ये हम आत्माओं की दुनिया शांति की दुनिया है। मैं मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से, परम ज्योति बिंदु पिता परमात्मा को देख रही हूँ। मुझ आत्मा के अति प्रिय मेरे परम पिता अनेक जन्मों से मैं आपके को खोज रही हूँ। अब मुझे आपका सही ज्ञान प्राप्त हुआ है। आपके सत्य परिचय को पाकर मुझे अपार हर्ष हुआ है। मेरे मन का अज्ञान अंधकार खत्म हुआ है। आपके सद्ज्ञान से मेरी बुद्धि रोशन हुई है। जीवन का सही ठिकाना मुझे मिल गया है। आपकी सत्य ज्ञान को पाकर अब मेरा यही लक्ष्य है मेरे प्यारे परम पिता, जो सत्य ज्ञान आप हमें देते हैं, जिन गुणों के आप सागर हैं, जिन अखुट शक्तियों के आप भंडार हैं, आपका सत्य ज्ञान सर्व सत्य गुण सर्व अलौकिक शक्तियां मुझे अपने जीवन में धारण करना है। शांति के सागर, शांति दाता, प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी अमर संतान, मैं भी शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। अब मैं स्वयं शांत रहूंगी, सर्वत्र शांति दूत बनकर शांति फैलाऊंगी। मैं शांत आत्मा हूँ। प्यार के सागर, मेरे प्यारे शिव बाबा, आपके संतान मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूँ। मुझे सब के साथ प्यार से चलना है, सबको सुख देना है। मुझे यही निश्चय और खुशी है मैं आत्मा आपकी अविनाशी संतान हूँ। मैं दिव्य ज्योति बिंदु अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा मूल रूप से सत्य हूँ, पवित्र हूँ, शांत